दिन भर तारीख 21 सितंबर दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अफगानिस्तान में भारत का कोई रोल नहीं देखते पाकिस्तान के पीएम अब्बासी, बीबीसी से खास बातचीत।
We don't see a political or military role for India in Afghanistan.
कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को झटका, कोर्ट ने मुहर्रम के मौके पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर लगी रोक हटाई।
पहला अक्टूबर मुहर्रम के वजह से विसर्जन बंद रखने का जो सिद्धांत सरकार ने लिया था उसको खारिज कर दिया है अदालत।
और भारत प्रशासित कश्मीर के त्राल में हुए चरमपंथी हमले में 3 की मौत, बाल बाल बचे, प्रदेश सरकार के मंत्री नईम अख्तर।
बदकिस्मती से यहाँ जब हम त्राल पहुँच के इस बाजार में आपने देखा तो हमारे काफिले पे ग्रेनेड अटैक हो गया।
होंगे आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान में भारत की सैन्य और राजनीतिक भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को इस तरह के सांचे में डालने का अर्थ है शांति में बाधा डालना। उनसे सवाल पूछा गया था कि अमरीका ने पाकिस्तान के बजाय भारत को तवज्जो देते हुए अफगानिस्तान में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए कहा है और इसीलिए पाकिस्तान पीछे हटता है। इसके अलावा उनके एक और इंटरव्यू की चर्चा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के से निपटने के लिए पाकिस्तान छोटी रेंज के परमाणु हथियार बना रहा है। भारत प्रशासित कश्मीर के त्राल में एक ग्रेनेड हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हो गए हैं। इसमें अर्धसैनिक बल के साथ जवान भी शामिल है। इस हमले में जम्मू कश्मीर सरकार के एक मंत्री बाल बाल बच गए हैं। ये धमाका पुलवामा जिले के एक बस स्टैंड पर हुआ है। म्यांमार में बौद्धों ने रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री की खेप को आगे बढ़ने से रोक दिया है। सितवे तट पर एक नाव को 300 से ज्यादा लोगों ने घेर लिया था। रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए राहत सामग्री रखाइन प्रांत में भेजी जा रही थी, जहां पर हिंसा के कारण लाखों रोहिंग्या विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा 4 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश में शरण ले रहे हैं। बांग्लादेश सरकार रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों के लिए विदेश से आने वाली मदद की जिम्मेदारी सेना को सौंपने जा रही है। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के पास शरणार्थी कैंपों में विदेश से राहत सामग्री को लेकर अनियमितता की खबरें थीं। इससे पहले रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए एक अस्थायी कैंप में राहत सामग्री ला रहे एक ट्रक के हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी मामलों की संस्था के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि रोहिंग्या लोगों के लिए बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर राहत की जरूरत है।
This is a refugee emergency. So I met the Prime Minister of Bangladesh here in New York in the margins of the General Assembly.
शरणार्थियों की आपात जरूरत है। मैं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिला और इस मसले पर साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी है। हम एक विशाल संकट के लिए निपटने के लिए चंदे की अपील करते हैं। कहते फिलिपो ग्रांडी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया के परमाणु संकट के बावजूद दक्षिण कोरिया ने पिछले 2 साल में पहली बार वहां के लिए मानवीय मदद भेजने का फैसला किया है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि वो उत्तर कोरिया के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में 80 लाख डॉलर का चंदा देगा। संयुक्त राष्ट्र के बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ का कहना है कि प्रतिबंध के कारण उत्तर कोरिया में मदद पहुंचाने का काम मुश्किल है, लेकिन ये बेहद जरूरी है। यूनिसेफ के अधिकारी क्रिस डेबोनो ने कहा,
There's a general understanding and I think it's a reasonable understanding amongst all concerned.
ये तो सभी समझते हैं कि उत्तर कोरिया में जो बच्चे संकट में हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसकी कीमत उन बच्चों को नहीं चुकानी चाहिए। सरकार और संयुक्त
हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो कि एक बैटलफील्ड तक के सीमित रहते हैं और बड़ी छोटी क्षमता के होते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे और इससे हम भारत के इस मंसूबे को डिफीट कर देंगे। वो काफी बड़ी थ्योरी है कि ये कितने डिस्टेबलाइजिंग होते हैं या नहीं होते, क्योंकि फिर जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम्स होता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का, वो काफी मुश्किल हो जाता है और पेचीदा हो जाता है, और उसका एक्सीडेंटल यूज या किसी पागल व्यक्ति के हाथ में अगर वो आ जाए और वो सडनली उसको जज्बा जिहाद सूझ जाए, वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम आशंकाएं रहती हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये दावा किया है, इसे किस तरह से भारत को देखना चाहिए, कितनी गंभीरता से इसे लेना चाहिए और क्या भारत की रणनीति होगी?
ये काफी समय से पाकिस्तान की ये मंसूबा रहा है कि अगर कोल्ड स्टार्ट को ऑपरेशनलाइज किया गया तो पाकिस्तान की तरफ से TNWs का इस्तेमाल होगा, तो इस लिहाज से कोई नई बात प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने नहीं की। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना तो जंग छेड़ सकते हैं ना जंग रोक सकते हैं। जो छेड़ते हैं और जिनको के पास न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता है या उनको इस्तेमाल करने की ताकत है पाकिस्तान में, वो खाकी वर्दी वाले फौजी हैं। तीसरी चीज ये कि इन्होंने मेरे ख्याल अपनी तरफ से काफी हिमाकत की कि अमेरिका में जहां पर उत्तरी कोरिया को लेकर के वैसे ही एक फिजा बनी हुई है, तो उधर ये बात करके कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली वॉर फाइटिंग के लिए, उससे ऑब्वियसली कोई पाकिस्तान की जो छवि जिसके इम्प्रूव करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो कोई बहुत ज्यादा उसमें कोई इनको खैर खा नतीजा नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की अगर इनको आदत है तो हमको उसको तो वेलकम करना चाहिए। ये जो सारा मंसूबा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का, ये भी एक लिहाज से बड़कबाजी है और एक बड़ी अहमकाना स्ट्रैटेजी है। और वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि भारत की जो बेसिक न्यूक्लियर पॉस्चरिंग है वो ये है कि हमारी फौजों के खिलाफ कहीं पर भी अगर इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो फिर हमारी तरफ से एक मैसिव रिटेलिएशन होगी। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से एक छोटा सा न्यूक्लियर पटाखा छोड़ा गया और उसके एवज में भारत ने पाकिस्तान को नष्ट कर दिया, तो क्या अगर पाकिस्तान उस राह पर चलना चाहता है तो वो उनकी मर्जी है। मेरे ख्याल भारत को उससे कोई बहुत ज्यादा खौफजादा होने की जरूरत नहीं है।
ये थे सुशांत सरीन। पूरी दुनिया का जोर परमाणु हथियारों में कमी लाने पर है, लेकिन एशियाई देश लगातार परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये बात अलग है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। किस देश के पास कितने हथियार हैं, बता रहे हैं हमारे साथी कुलदीप मिश्र।
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन की रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में दुनिया भर में करीब 70,300 परमाणु हथियार थे, जो 2017 की शुरुआत में 14,900 रह गए हैं। सरकारें वर्तमान हथियार नियंत्रण समझौतों के तहत हथियारों की संख्या बताती हैं। दुनिया भर के कुल परमाणु हथियारों के 93% हथियार रूस और अमरीका के पास हैं। दोनों देशों के जखीरों में 4,000 से 4,500 परमाणु हथियार हैं। अमरीका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के 1,800 परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर रहते हैं और ये कम वक्त के नोटिस पर तबाही मचा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और भारत परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं। FAS की रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। असल में किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, यह काफी गोपनीय मसला है। FAS ने कहा है कि इन सारी गोपनीयताओं के बावजूद बहुत सतर्कता से ऐतिहासिक रिकॉर्ड, मौके मौके पर लीक हुई सूचनाएं और अनुमानों के आधार पर विश्लेषण करके ये संख्या बताई गई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान के पास 120 से 130 और भारत के पास 110 से 120 परमाणु हथियार हैं।
ये थे कुलदीप मिश्र। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इन दिनों अमरीका के दौरे पर हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर राहुल ने कहा कि भारत की शांति और संभावना वाले देश की छवि खराब की जा रही है। इस कार्यक्रम में राहुल को विरोध का भी सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट के साथ न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
अमरीकी दौरे पर आए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की छवि खराब की जा रही है। राहुल गांधी टाइम्स स्क्वायर के मैरियट मार्की होटल में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
देयर आर फोर्सेस इन आवर कंट्री दैट आर डिवाइडिंग द कंट्री एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री एंड इट रुइंस आवर रेपुटेशन अब्रॉड।
भारत ने हजारों साल से शांति और सद्भावना के साथ चलते हुए दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अब भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। राहुल गांधी ने कहा, विश्व के कई देश इस उम्मीद से भारत की तरफ देख रहे हैं कि 21वीं सदी में भारत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से हिंसा का जवाब देगा, लेकिन भारत में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसे बांटना चाहती हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस की विचारधारा हजारों वर्ष पुरानी है और वो है सच्चाई के साथ खड़े होना। अप्रवासी लोगों को राहुल गांधी ने भारत की रीढ़ की हड्डी बताया।
Wherever I went, you made me feel proud to be an Indian. Everywhere you look in this country, there is an Indian person working.
राहुल गांधी के संबोधन के समय होटल की इमारत के बाहर कुछ लोगों ने सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, लेकिन करीब 2000 लोग जो होटल के अंदर राहुल गांधी का भाषण सुनने पहुंचे थे उनमें मिली जुली प्रतिक्रिया थी। नवीन मेहता भाजपा के समर्थक हैं, उनको राहुल गांधी का भाषण पसंद नहीं आया।
ऐसा लगा कि उसने बिना पढ़े हुए दिया, मगर पॉइंट्स जो थे काफी स्क्रिप्टेड थे, वही एक चीज। और कुछ तो नया फंडा कि ये NRI की पार्टी है कांग्रेस, कुछ तो ऐसा अभी क्योंकि आप NRI है तो ये NRI की पार्टी है। जो उसने कुछ तो बताया, मेरे पास 3 पॉइंट है फॉर द इकोनॉमी, कुछ नया नहीं कहा।
वहीं प्रमोद जैन का परिवार कांग्रेस पार्टी का पुराना हिमायती है। प्रमोद 37 साल पहले भारत से अमेरिका आए थे, वो कहते हैं
ये शुरुआत तो बीजेपी की करी हुई है, पिछले 5 साल पहले मोदी जी ने किया और उनको उनका सक्सेस रेट मिला। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जो भी ऑफिस बीरर्स लोग हैं उन्होंने इनको एडवाइज किया होगा। किसी भी लीडर की बात और उसके जवाब सवाल जवाब से पता लगता है कि वो कितना मैच्योर लेवल पे जा रहा है। एंड आई डू नॉट से कि भाई वो कोई उस लेवल के लीडर हो गए जो कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल जी थे या कुछ थे, बट वो उस रास्ते पे हैं और उनके जवाब बड़े मैच्योर थे।
सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर BBC पर है।
अगली खबर कोलकाता से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से मोहर्रम के मौके पर दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन पर लगी रोक को हटा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ दिन पहले यह रोक लगाई थी। मैंने इसे लेकर कोलकाता में मौजूद BBC संवाददाता अमिताभ भट्टासाली से बात की और पूछा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है।
अदालत की डिवीजन बेंच ने यह कहा है कि विजयदशमी के दिन यानी 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हर दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन चालू रहेगा रात 12 बजे तक, और 1 अक्टूबर मुहर्रम के वजह से विसर्जन बंद रखने का जो सिद्धांत सरकार ने लिया था उसको खारिज कर दिया है अदालत। और ये भी निर्देश दिया कि मुहर्रम के दिन हिंदुओं के विसर्जन और मुसलमानों का मुहर्रम के जुलूस अलग अलग रूट से जाएगा। ये प्रशासन को ही तय करना होगा कि कौन सी जुलूस किस रास्ते से जाएगा ताकि दोनों प्रदाय आमने सामने ना हो जाए, और पुख्ता पॉलिसी बंदोबस्त करने का भी निर्देश दिया गया। इस निर्देश के बाद DGP कोलकाता पुलिस के कमिश्नर और सर्वोच्च प्रशासनिक अफसरों के साथ एक बैठक में मिली थी ममता बनर्जी ने, तो उसमें ये सिद्धांत लिया गया कि हर जिले में दुर्गा पूजा के विसर्जन और ताजिया जुलूस कैसे अलग अलग रास्ते से निकलेगी ये स्थानीय प्रशासन तय करेगा।
आदेश जो आया है हाईकोर्ट का, इसके बाद क्या राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी है?
राज्य सरकार का तो प्रतिक्रिया वही है कि अदालत के निर्देश को पालन किया जाएगा, पर ममता बनर्जी एक आम सभा में एक बोल रही थी कि BJP का जो आरोप है जो कि ममता बनर्जी मुसलमानों को अपीज करने का पॉलिटिक्स कर रही थी, तो उसका जवाब दिया है ममता बनर्जी ने। वो उन्होंने सवाल उठाया कि जब वो मंदिर में जाती है, जब वो क्रिसमस के दौरान चर्च में जाती है, तब कोई अपीजमेंट की तो बात उठाता नहीं है, और वो अपीज करने का जो आरोप उन पर लग रहा है उसको सरासर खारिज करते हुए भाषण दिया है।
तो ये पूरा जो मामला हुआ, पहले राज्य सरकार का आदेश आया, उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आया, क्या असर आप इसका देख रहे हैं?
इसमें ज़्यादा कुछ असर नहीं होना था, क्योंकि ये बहुत ही कम संख्या में मुसलमान, पश्चिम बंगाल के मुसलमान लगभग 10% मुहर्रम के दिन जुलूस निकालते हैं या ताजिया निकालते हैं। हमने मुसलमान लीडरों से भी बात किया है, उनका भी कहना था कि पॉकेट एरिया में ऐसे जुलूस निकालता है, ज़्यादातर मुसलमान इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो इसलिए उनका ये कहना है कि शायद सरकार को ये सिद्धांत लेने में ही गलती हो गया था, उन्होंने ये गलत सोच लिया था कि ईद और मुहर्रम को एक जैसा उत्सव के हिसाब से देख रहा था सरकार। इतना बड़ा प्रशासनिक सिद्धांत लेने का कोई जरूरत ही नहीं था। कोलकाता में 3-4 जगह पर जुलूस निकालता है, जिले में बहुत ही कम निकलता है, क्योंकि मुहर्रम के दिन ज्यादातर शिया मुसलमान और बरेलवी जो मुसलमान है ज्यादातर यही लोग जुलूस निकालते हैं, और वो संख्या में पश्चिम बंगाल में बहुत कम है।
ये थे BBC संवाददाता अमिताभ भट्टासाली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक पूजा करने का अधिकार है। अगर मैं एक मुस्लिम कार्यक्रम में जाती हूँ तो मुझ पर तुष्टिकरण का आरोप लगता है, अगर मैं हिंदू कार्यक्रम में जाती हूँ तो हिंदुओं के तुष्टिकरण के आरोप बेहद तकलीफदेह हैं। ममता बनर्जी ने और क्या कुछ कहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। और हम अब रुक कर रहे हैं भारत प्रशासित कश्मीर का, जहां त्राल में राज्य सरकार के एक मंत्री के काफिले पर आज हमला किया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
राजधानी श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिणी कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल कस्बे के बस अड्डे में हुकुमरान जमात पीडीपी के मंत्री नईम अख्तर के काफिले पर उस समय हथगोला फेंका गया जब बस अड्डे से उनका काफिला गुजर रहा था। तहम जिस गाड़ी में मंत्री सवार थे उस पर हथगोला नहीं गिरा, मंत्री हमले में सुरक्षित बच निकल गए। मंत्री के काफिले के करीब हथगोला फटने से 3 आम लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुनीर खान ने इस हवाले से बीबीसी को बताया। आज ही कश्मीर बता रहे थे कि आज आरएनबी के मंत्री के काफिले पर उस समय एक हथगोला फेंका गया जब उनका काफिला त्राल के बाजार से गुजर रहा था। हथगोला फटने के नतीजे में 3 आम लोगों की मौत हो गई है जबकि सीआरपीएफ और पुलिस समेत 30 लोग घायल हो गए हैं। नईम अख्तर ने हमले के बाद त्राल में पत्रकारों को बताया
कि लोगों को अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूशंस वो इनको दे दें। तो आज मैं उसी सिलसिले में आया था क्योंकि हम यहाँ कोई 100 करोड़ के काम कर रहे हैं त्राल में। आपने भी देखा होगा सड़कें कितनी अच्छी बन रही हैं। तो लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जब हम त्राल पहुँच गए इस बाजार में आपने देखा तो हमारे काफिले पे ग्रेनेड अटैक हो गया।
हमले के बाद त्राल के लोगों ने सुरक्षा बलों पर पैलेट और फायरिंग करने का आरोप लगाया है। तहम पुलिस और खुद मंत्री ने इन आरोपों को गलत ठहराया है। घायलों को श्रीनगर के SMHS अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। दक्षिणी कश्मीर चरमपंथ का गढ़ माना जाता है। बीते 3 महीनों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर में चरमपंथियों के बड़े बड़े कमांडरों और उनके कई साथियों को मारा है। यह हमला एक ऐसे समय में किया गया है जब हुकुमरान जमात PDP दक्षिणी कश्मीर में आम लोगों तक पहुँचना चाहती है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
और श्रोताओं, अब समय है आपकी राय का।
आपकी राय में आज मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे और मेरे साथ हैं
नमस्कार राजेश प्रियदर्शी की ओर से
और नमस्कार मेरा भी। तो हमारे पास चिट्ठी आई है विष्णु वर्मा की गांव ककोली फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि आप बताइए कि रोहिंग्या मुसलमान कौन है, म्यांमार में कैसे पहुंचे, कहां के निवासी थे, इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं।
जी, ये जानकारी हम अनेक बार अपने कई कार्यक्रमों में दे चुके हैं और लगातार दे रहे हैं। हमारी जो वेबसाइट है bbchindi.com उस पर भी इस बारे में काफ़ी जानकारी है। रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो बर्मा के रखाइन प्रांत के रहने वाले लोग हैं और इस वक्त बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और उनके बारे में जानकारी आपको लगातार हमारे कार्यक्रमों में दी जा रही है और हमारी वेबसाइट के जरिए भी आप उनके बारे में और पढ़ सकते हैं।
और ये हमारे पास पोस्ट कार्ड आया है अशोक कुमार ठाकुर का, माली टोला आदलपुर दरभंगा बिहार से। रेहान फजल की तारीफ आई है, हमेशा की तरह विवेचना की तारीफ करते हैं। और साथ में मेल भी आया है उमेश कुमार यादव का और ये भी कहते हैं कि भाई रेहान फजल भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
रेहान साहब को हम बता देंगे कि उनका कार्यक्रम हमेशा की तरह लोगों को पसंद आया।
और इसके साथ साथ एक और हमारा कार्यक्रम है जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, यतीन्द्र मिश्र द्वारा संग संग गुनगुनाओगे।
जी,
ये पोस्टकार्ड भेजा है नागेंद्र कुमार कुशवाहा पिपराही बाजार शिवहर बिहार से। और इसके साथ साथ मेल भी है गणेश प्रसाद हौजदार का।
ये जो पिपराही बाजार से हमारे श्रोता ने भेजा है पत्र, इसमें उन्होंने 4 रंग की स्याही का इस्तेमाल किया
है। हमेशा ऐसी चिट्ठी भेजते हैं।
हरा, लाल, नीला और
काला।
जी,
और अगला हमारे पास ईमेल आया है विकास कुमार का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि मुझे लगता है कि शायद आप लोग बीबीसी को, खासतौर पर बीबीसी हिंदी को बहुत सीरियसली नहीं लेते क्योंकि कई प्रोग्राम खामखा बार बार रिपीट करते हैं।
हमारे श्रोता कहते हैं कि हम उनकी फरमाइशों को सीरियसली नहीं लेते और वो कहते हैं कि दोबारा सुनवाया जाए कार्यक्रम और तब हम नहीं सुनवाते हैं, जब हम सुनवाते हैं तो फिर हम ये सुनते हैं। ये हमेशा एक संतुलन की बात है। हम कोशिश करते हैं कि आप नए नए कार्यक्रम भी सुनें और कुछ पुराने कार्यक्रम जिनको आपने ही बहुत पसंद किया है वो आप ही की फरमाइश पर, आपके सुझाव पर, आपके कहने पर हम आपको सुनवाते हैं। और हम अपने कार्यक्रमों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं। और अगर आपने उल्लेख किया होता कि हमने किस कार्यक्रम को दोबारा सुनवाया जिसको नहीं सुनवाना चाहिए था तो शायद हम आपका और बेहतर तरीके से जवाब दे पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलें।
साथ में ये भी कहते हैं कि आर्थिक जगत की कोई खबर नहीं देते आप लोग।
आर्थिक जगत की खबर जैसे हमारे श्रोता हैं, अगर वो विशेष तौर पर कुछ जानना चाहते हैं तो ये अलग बात है, वरना जो आर्थिक जगत की बहुत बड़ी खबरें हैं जैसे नोटबंदी की खबर है या जीडीपी में गिरावट की खबर है या अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की से जुड़ी जो चिंताएं हैं, ये सब जो बड़ी खबरें हैं वो ज़रूर हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
और राजेश जी, आपके लिए मेल है, ये अमरिंदर सिंह राजपूत ने भेजा है, लिखते हैं, राजेश प्रियदर्शी गुड जॉब वेल डन।
ये किस बारे में लिखा है इन्होंने?
आपने शायद जो लेख लिखा था उसके बारे में है।
इसके आगे नीचे पढ़िए, ये तारीफ नहीं है, ये व्यंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और ये अगर इन्होंने बताया होता कि किस बारे में इन्होंने कहा है तो और बेहतर होता। ये कह रहे हैं कि वन थिंग आई कैन टेल यू दैट यू विल गेट कांग्रेस टिकट फॉर श्योर इन नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। न मेरा ऐसा कोई इरादा है, न मेरी ऐसी कोई इच्छा है और न मेरी ऐसी कोई मंशा थी। तो आप ये जो कह रहे हैं ये मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये आपका व्यंग है और इसका भी स्वागत है।
लेकिन मुझे लगा था कि आपकी
तारीफ नहीं, ये तारीफ नहीं थी, ये बाद में अगला वाक्य पढ़ने पर पता चला।
और हमारे पास अगला मेल आया है विवेक कुमार यादव का, महाराजगंज गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ये पाकिस्तान के संवाददाता वसुतुल्लाह खान की बात करते हैं कि उन्होंने जो 18 तारीख को लाहौर चुनाव पर रिपोर्टिंग की थी वो बहुत इनको बचकाने लगी।
वसुत जो है वो बहुत ही अनुभवी और पुराने पत्रकार हैं, वो अब बीबीसी के संवाददाता नहीं हैं, वो पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीबीसी हिंदी के लिए भी काम करते हैं लेकिन कई और दूसरे समाचार माध्यमों के लिए काम करते हैं। कई बार वो बहुत गंभीर बात बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा हो। घड़ी का इशारा है कि वक्त हो चला है तो अब और चिट्ठियां हम आज शामिल नहीं कर पाएंगे लेकिन हमें ज़रूर लिखते रहें और लगातार लिखते रहें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
इंदु पांडे जी एक बार फिर आ गई हैं स्टूडियो में, लेकिन भूमिका बदल गई है, नई भूमिका है, खेल की दुनिया की वो खबरें लेकर आई हैं। इंदु जी, मैच चल रहा है एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोलकाता में, जहां कोलकाता में भारत ने लक्ष्य दिया है 253 रन का ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया का भी स्कोर है 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर
जी।
मैं क्रिकेट की बात आपसे बात करूंगा लेकिन पहले क्या कोई और खेल की खबरें हैं आपके पास?
जरूर, अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो पीवी सिंधु और साइना नेहवाल आज जापान ओपन में दूसरे दौर में हारने के बाद बाहर हो गई हैं, तो वहीं किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय ने पुरुषों के एकल वर्ग में क्वार्टर फाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। और अगर इसको और हम विस्तार से जानें तो दुनिया के 8वें नंबर के श्रीकांत ने हांगकांग के यू यून को आधे घंटे के अंदर 21-12 21-11 से शिकस्त देकर अंतिम 8 में प्रवेश किया है
जी।
इस साल लगातार इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने वाले इस भारतीय खिलाड़ी का सामना अब हाल में विश्व चैंपियन बने डेनमार्क विक्टर से होगा, और इन दोनों के बीच हार जीत का जो रिकॉर्ड है वो 2-2 से बराबरी का है, जिसमें श्रीकांत ने विक्टर के खिलाफ शुरू के 2 मुकाबलों में फतह हासिल की, जबकि इस खिलाड़ी ने पिछले 2 भिड़ंत में सीधे गेमों में जीत दर्ज की थी
जी। और अब मैच की बात, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए निर्धारित 50 ओवर में
जी,
विस्तार से बताइए।
देखिए, भारतीय टीम को पहला झटका 5 ओवर के बाद ही लगा जब रोहित शर्मा 14 गेंदों में महज 7 रन बनाकर कोल्टर नाइल के हाथों बोल्ड हो गए। इसके बाद क्रीज पर कप्तान विराट कोहली उतरे और उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर 102 रनों की साझेदारी की। रहाणे 24वें ओवर की चौथी गेंद पर रनआउट हुए और उन्होंने 64 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। पिछले मैच में धमाकेदार पारी खेलने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस बार सिर्फ 5 रन ही बना सके, 10 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने एक चौका भी लगाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोल्टर नाइल और के रिचर्डसन ने 3-3 विकेट लिए, जबकि क्यूमिंस और एश्टन ने 1-1 विकेट झटके
जी। भारतीय पारी के हीरो की बात नहीं की आपने, विराट कोहली जो कप्तान भी है भारतीय टीम के, जिन्होंने 92 रन बनाए, 107 गेंदों का सामना किया, 8 चौके लगाए, वो अपना शतक चूक गए लेकिन उन्होंने भारत को एक चुनौती भरे स्कोर तक पहुंचाने में मदद की।
बिल्कुल, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वनडे क्रिकेट में ये उनका 5वां मौका था जब कोहली नर्वस 90s के शिकार हुए।
अच्छा, 5वीं बार हुए
जी, क्योंकि इससे पहले वो आखिरी बार पर्थ में मेजबान के खिलाफ 91 रन बनाकर नर्वस 90s के शिकार हो गए थे
जी। और अब हम अपने श्रोताओं को बता दें, ताज़ा स्कोर है 23 ओवरों में 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला है 253 रन का लक्ष्य, यानी 147 रन वो अभी पीछे हैं, 6 विकेट उनके पास है। बहुत शुक्रिया इंदु पांडे। वक्त श्रोताओं से विदा लेने का है, लेकिन मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में भारत की सैन्य और राजनीतिक भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को इस तरह के सांचे में ढालने का अर्थ है शांति में बाधा डालना। भारत प्रशासित कश्मीर के त्राल में एक ग्रेनेड धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हो गए हैं। लीबिया से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे करीब 100 अफ्रीकी प्रवासियों के डूबने की आशंका है। इसमें 30 महिलाओं और बच्चों के डूबने की पुष्टि की गई है। म्यांमार में बौद्धों ने रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री की खेप को आगे बढ़ने से रोक दिया है। बांग्लादेश सरकार रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों के लिए विदेश से आने वाली मदद की जिम्मेदारी सेना को सौंपने जा रही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया भूमिकाएं। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।